दिन भर तारीख 6 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दास। जल्द होगी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात।
Our hostages have come home. Nuclear testing has stopped. Chairman Kim and I will meet again on.
VHP ने फिलहाल रोका राम मंदिर निर्माण आंदोलन।
लोग कहते थे कि भाई आप लोगों ने चुनावों का लाभ लेने के लिए ये किया है, इसीलिए हम लोगों ने इन सब आरोपों से बचने के लिए ही इन दिनों में हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे।
दुनिया जहान में होगी बात 31 साल पुराने न्यूक्लियर फोर्स संधि की।
नया किस्म का आर्म्स रेस शुरू होने वाला है। अमेरिका अपना नए नए वेपन्स बना रहा है, रशिया भी वही कर रहा है और इसका जो प्रभाव।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार आदर्श राठौर से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में अवैध प्रवासन रोकने और सीमा पर दीवार बनाने के लिए उनकी योजना पर समझौते की अपील की है, मगर उन्होंने संपन्न उदारवादी राजनेताओं पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वो खुद तो दीवारों और गेटों के पीछे रहते हैं लेकिन वकालत खुली सीमाओं की कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रवासियों के बड़े कारवां अमरीका की ओर बढ़ रहे हैं और इनसे निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीफन बीगन डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच दूसरे सम्मेलन पर चर्चा के लिए प्योंगयांग पहुंचे हैं। जिस समय वो उत्तर कोरिया पहुंचे हैं उसी समय ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में कहा कि इस महीने के आखिर में ये बैठक वियतनाम में होगी। नेटो के सदस्य देशों ने ब्रसल्स में हाल ही में नाम बदलने वाले रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया को नेटो के 13वें सदस्य के रूप में शामिल करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीस लंबे समय से इस बात पर आपत्ति जता रहा था कि उनका पड़ोसी देश खुद को मैसेडोनिया कहता है, मगर देश के अंदर से विरोध के बावजूद पिछले साल मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया करने का फैसला किया था। मैसेडोनिया देश के विदेश मंत्री निकोला दिमित्रोव ने कहा कि उनके दौर में वो काम हुआ है जिसे असंभव माना जा रहा था। नेटो के महासचिव जेन्स स्टॉलनबर्ग ने ग्रीस और मैसेडोनिया के नेताओं की तारीफ करते हुए कहा,
दिस इज अ हिस्टोरिक ओकेशन। Prime Minister Tsipras and Prime Minister Syriza,
ये ऐतिहासिक मौका है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बहुत ही कूटनीतिक दूरदृष्टि और हिम्मत का परिचय देते हुए पिछले साल समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो लंबे समय से असहमतियों को दूर करने की कोशिश में लगे थे। ऐसे में दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में अहम योगदान दिया है। ये थे नेटो के महासचिव जेन्स स्टॉलनबर्ग के शब्द। जिहोवाज विटनेस के डेनमार्क के सदस्य को रूस में धार्मिक चरमपंथ के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई है। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में जिहोवाज विटनेस को चरमपंथी मूवमेंट करार दिया था। इसके बाद से डेनिस पहले सदस्य हैं जिनके ऊपर इस मामले में मुकदमा चला। 2017 में पुलिस ने उस प्रार्थना स्थल पर दबिश दी थी जहां पर क्रिस्टनसन रहते थे और उन्हें 15 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन ने दखल देते हुए कहा था कि जिहोवाज विटनेस को चरमपंथी कहना ठीक नहीं है। डेनमार्क ने इस सजा को लेकर चिंता जताई है। पोप फ्रांसिस ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च में बिशपों और पादरियों द्वारा ननों की शोषण करने की समस्या रही है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह शोषण जारी था और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की है। कैथोलिक अखबार द टैबलेट की पूर्व संपादक कैथरीन पेपिंस्टर ने BBC से कहा कि पोप को इस मामले को और गंभीरता से लेना चाहिए।
Pope Francis made this comment, admitting there had been abuse of nuns during a flight.
Pope Francis ने UAE से वापस आते हुए विमान में कहा कि ननों का शोषण होता रहा है। उन्होंने कहा कि मानवता अभी परिपक्व नहीं हुई है और संस्कृति में बदलाव की जरूरत है। मेरे ख्याल से उन्हें ये कहना चाहिए था कि कैथोलिक चर्च को परिपक्व होना चाहिए और उसकी संस्कृति में बदलाव होना चाहिए। ये थे कैथोलिक अखबार द टैबलेट की पूर्व संपादक कैथरीन पेपिंस्टर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्पेन में विपक्ष के नेता पाब्लो कसाडो ने प्रधानमंत्री पेद्रो सैंचेज़ पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। कैटालोनिया के अलगाववादी प्रशासन के साथ बातचीत के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के लिए इजाजत देने के प्रधानमंत्री के फैसले की तुलना पाब्लो ने 1981 में हुए तख्तापलट की कोशिश से की। पाब्लो कसाडो ने स्पेनिश न्यूज एजेंसी से कहा कि वो इसके विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये आंतरिक मामला है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। सबसे पहले खबर अमेरिका से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में घोषणा की है कि वो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ दूसरे शिखर सम्मेलन में इसी महीने हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस सम्मेलन की जगह का भी ऐलान कर दिया। जहां पिछला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था, वहीं दूसरा शिखर सम्मेलन वियतनाम में होगा। ट्रंप की स्पीच में मेक्सिको के साथ सटी सीमा पर दीवार बनाने का मुद्दा भी रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और वेनेजुएला और अफगानिस्तान का मुद्दा भी। और क्या क्या कहा ट्रंप ने, सुनिए न्यूयॉर्क से हमारे सहयोगी सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और स्पीकर नैंसी पेलोसी के साथ कई हफ्तों की उठापटक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण का मौका मिला, तो उन्होंने अपने प्रशासन की कई उपलब्धियां गिनाई और अमरीका को दरपेश खतरों से भी आगाह किया।
America is again winning each and every day. Members of Congress, the state of our union is strong.
घरेलू मुद्दों में ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए फिर एक बार अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के वादे को दोहराया।
In the past, most of the people in this room voted for a wall. But the proper wall never got built. I will get it built.
डेमोक्रेट्स की तरफ इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि सभागार में मौजूद बहुत से लोगों ने अतीत में दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के लिए मतदान किया था, लेकिन एक मुकम्मल दीवार न बन सकी। अब मैं दीवार बनवाऊंगा। लेकिन ट्रंप ने इस दीवार के लिए कांग्रेस से धन न मंजूर किए जाने की सूरत में सरकारी कामकाज के फिर बंद होने का कोई जिक्र नहीं किया, न ही उन्होंने इमरजेंसी लागू करने की कोई बात की। याद रहे कि ट्रंप की इस दीवार के लिए डेमोक्रेट्स की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा द्वारा धन मंजूर न किए जाने के कारण पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई आंशिक कामबंदी 35 दिनों तक जारी रही थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि 15 फरवरी तक अगर कोई समझौता नहीं होता है तो फिर शटडाउन या इमरजेंसी लागू हो सकती है। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी जिक्र किया और बेरोजगारी में कमी लाने का सेहरा अपने सर बांधा। ट्रंप ने राजनीतिक एकता पर भी बात की और कहा कि अमेरिकी लोग साथ मिलकर दशकों पुराने राजनीतिक गतिरोध को तोड़ सकते हैं और अमरीका के भविष्य के लिए असाधारण वादों को पूरा कर सकते हैं। ट्रंप का भाषण 1 घंटा 21 मिनट चला, जो अमरीकी इतिहास में तीसरी सबसे लंबी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच कही जा रही है। ट्रंप के इस भाषण को अगले साल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मुहिम का आगाज भी कहा जा रहा है। भाषण के दौरान ही ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से नई मुलाकात की भी घोषणा की।
If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Much work remains to be done. But my relationship with Kim Jong-un is a good one. Chairman Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam.
अगर मैं अमरीकी राष्ट्रपति न चुना गया होता तो मैं समझता हूँ अभी हम उत्तर कोरिया के साथ एक बड़ी जंग लड़ रहे होते। अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन किम जोंग-उन के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। हम 27 और 28 फरवरी को वियतनाम में फिर मिलेंगे। ट्रंप के शब्द। पिछले साल जून में सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच हुई मुलाकात अमरीकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के नेता के बीच पहली मुलाकात थी। वेनेजुएला में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के लोगों के साथ अमरीका की हिमायत दोहराई और मुदारुशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उसके कारण वेनेजुएला में गरीबी और अराजकता फैली है। अमरीकी विदेश नीति में अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने तालिबान के साथ बातचीत के जरिए राजनीतिक हल निकाले जाने की उम्मीद जताई।
Our negotiations to reach, if possible, a political settlement in Afghanistan.
Trump कह रहे थे, मैंने अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए संभावित राजनीतिक हल निकाले जाने की प्रक्रिया तेज की है। इससे हमारे विरोधी भी बहुत खुश हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में अब एक लंबे अरसे से जारी खूनी जंग संभवतः खत्म होने को है। नेटो का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका की विश्व में इज्जत बढ़ी है और उन्होंने कहा कि वो नेटो के सहयोगियों से सैन्य अभियानों से जुड़े खर्चे का पैसा निकलवाने में भी कामयाब हुए हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
लीडर भी निडर भी,
सियासत की फिसलन भरी जमीन पर मजबूती से पांव जमाती महिलाएं, बीबीसी हिंदी का खास आयोजन। 8 फरवरी को आप सुनेंगे उन खास महिलाओं के संघर्ष और सफलता की दास्तान, उन्हीं की आवाज में जो है लीडर भी निडर भी।
और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां खंडवा में कांग्रेस के सत्ता संभालने के बाद पहली बार 3 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इन लोगों पर गोहत्या का आरोप है। वहीं इनके वकील का कहना है कि इन लोगों के साथ साजिश हुई है। सुनिए हमारे सहयोगी शुर नियाजी की रिपोर्ट।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खंडवा जिले के खरखली गाँव के पास गौहत्या होने की सूचना मिली थी। पुलिस का दावा है कि जब पुलिस उस स्थान पर पहुंची तो सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने 3 आरोपी नदीम, शकील और आजम को बाद में गिरफ्तार कर लिया। खंडवा के नदीम और शकील दोनों भाई हैं और तीसरा आरोपी आजम अलग है, जो खरखली गांव का है जहां पर यह घटना घटी है। खंडवा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने बताया,
ये करीबन 3 दिवस पूर्व थाना मोगट क्षेत्र अंतर्गत हमको सूचना मिली थी कि वहां अवे जो गौवंश है उसको काटा जा रहा है कुछ 3-4 लोगों के द्वारा, जिस पर से पुलिस टीम गई और वहाँ पे पुलिस टीम ये सूचना जो है ये सही मिली और 3 आरोपी जो हैं वो मौके से वहाँ से भाग गए थे, लेकिन जो गौवंश था वो मिला था। विधिवत कार्रवाई करते हुए इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 3 के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है, कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजकर।
पुलिस के अनुसार नदीम उर्फ राजू पर पहले भी गौवध का मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले में रासुका के तहत कार्रवाई करने को पुलिस अधीक्षक ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा,
जो अवैध गौवंश है ये इससे सांप्रदायिक दृष्टि से देखें तो ये काफी संवेदनशील मामला रहता है, तो इसलिए इसमें एक मैसेज है कि जो सांप्रदायिक जो सौहार्द जो बिगाड़ेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं स्थानीय लोग और इन लोगों के वकील का मानना है कि यह पूरा मामला आपसी रंजिश का है। वकील नफीस कुरैशी ने बताया,
आरोपी शकील और नदीम उर्फ राजू खंडवा के निवासी हैं, जिनका गलत रूप से ग्राम खरखली का निवासी होना बताकर उनके विरुद्ध ये साजिश के तहत फंसाए जाने पर ये मामला बनाया गया है। उनका इस घटना से कोई सरोकार नहीं है।
मध्य प्रदेश का खंडवा जिला वैसे काफी संवेदनशील माना जाता रहा है। सरकार इसी क्षेत्र में दावा करती रही है कि सिमी के कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं। भोपाल में कथित मुठभेड़ में मारे गए सिमी सदस्य भी यहीं से ताल्लुक रखते थे। हालांकि इस मामले में स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस के मुखबिरों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया ताकि इन लोगों को फंसाया जाए। इस मामले में आरोपियों का परिवार कुछ भी बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का आंदोलन अगले 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि ये फैसला कुंभ में धर्म संसद के दौरान लिया गया ताकि राम मंदिर जैसे मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो। परिषद दशकों से राम मंदिर के लिए आंदोलन करती रही है और पिछले दिनों उसकी मांग रही थी कि मोदी सरकार इस मामले पर या तो अध्यादेश या कोई कानून लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता स्पष्ट करे। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने सुरेंद्र जैन से पूछा कि वीएचपी ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला क्यों लिया।
ऐसा है, मैं फिर कहूंगा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, केवल आंदोलन नहीं करेंगे 4 महीने, यही हमने तय किया।
तो मान लीजिए पोस्टपोन कर दिया।
अब क्या है कि हमने घोषणा की थी कि प्रयाग के कुंभ के अवसर पर धर्म संसद में अभी तक की जो सारी उपलब्धियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा होगी। और चर्चा करने पर यह ध्यान में आया कि आगामी 4 महीने चुनाव के हैं, कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है चुनाव की घोषणा के साथ ही। उसके 2 परिणाम होंगे, एक तो कुछ जगह ऐसी राज्य सरकारें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में संघर्ष निर्माण करने की कोशिश करेंगी, बंगाल की सरकार सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरा, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर यदि हम कोई इन दिनों में आंदोलनात्मक कार्यक्रम करते हैं तो लोग तरह तरह की छींटाकशी करते हैं। इन 2 कारणों से संतों ने तय किया कि हम केवल जागरण करेंगे।
लेकिन जैन साहब, एक अजीब सी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो ये अचानक से वीएचपी और आरएसएस या हिंदुत्व संगठनों को क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये भी सत्य है कि 2 सीटों से जो है वो 92 और उसके बाद इस देश में सरकार अगर बीजेपी की बनी अपने बलबूते, तो वो इसी कारण बनी कि राम मंदिर आंदोलन उसके पीछे कहीं ना कहीं था।
ऐसा है, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सहभागिता की, हमने राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि हम पर ये आरोप बार बार लगाए जाते थे संयोग से कोई कार्यक्रम ऐसा आ गया जो चुनाव के नजदीक है तो लोग कहते थे कि भाई आप लोगों ने चुनावों का लाभ लेने के लिए ये किया है। इसीलिए हम लोगों ने इन सब आरोपों से बचने के लिए ही इन दिनों में हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे।
लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी ने अपने जो है घोषणा पत्र में लिखा है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, तो वो आखिरकार उसको तो राजनीतिक माना ही जाएगा, उसके राजनीतिकरण से कैसे आप इनकार कर सकते।
हमारी कोशिश ये है कि हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगना चाहिए।
आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं।
हाँ, केवल विश्व हिंदू परिषद, मैं विश्व हिंदू परिषद का ही पदाधिकारी हूँ। और दूसरा, जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है कि हम कानून बनाने की बात को लेकर आगे बढ़े थे फिर क्यों रुक गए, हम रुके नहीं हैं। और इसलिए नहीं रुके हैं क्योंकि हमको अब भी ये लग रहा है कि वही एक रास्ता है इसके स्थायी समाधान के लिए। लेकिन भाजपा को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को। हालांकि उनके मंदिर के प्रति कमिटमेंट में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो गई है हमारी जमीन वापस लेने के लिए, उस जमीन के लिए ही उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये दो बार हमने पहले भी कोशिश की, किसी भी सरकार ने इतना भी करने का प्रयास नहीं किया।
जैन साहब, मैं मोहन भागवत जी की एक स्पीच सुन रहा था जो कुंभ में उन्होंने आपकी धर्मसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा है एक जगह अपने भाषण में कि ऐसा कुछ ना हो कि उनको हमारे आंदोलन की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
ऐसा है कि भाजपा की सरकार आए ये हम भी चाहते हैं, कि हमको भव्य मंदिर बनाना है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है।
ये थे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन, उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। विश्व के दो बड़े देश अमेरिका और रूस लंबे समय से एक दूसरे पर 31 साल पुरानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे, मगर अब पहले अमेरिका ने और फिर रूस ने इस संधि को स्थगित कर दिया। शीत युद्ध को खत्म करके तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभाने वाली इस संधि के टूटने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ये संधि टूटती है तो पूरी दुनिया की शांति के लिए बड़ा झटका होगा। ये संधि क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसके टूटने से दुनिया पर क्या असर हो सकता है, इस बार दुनिया जहान में बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की।
दुनिया जहां,
Unlike treaties in the past, it didn't simply codify the status quo or a new arms buildup.
पहले हुई संधियों की तुलना में इस संधि में ये नहीं कहा गया है कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। हथियारों की होड़ रोकने की बात भी नहीं की गई है, बल्कि इतिहास में पहली बार हथियारों को घटाने की बात की गई है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ की परमाणु मिसाइलों को हटाने की बात हुई है।
ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्द हैं, जो उन्होंने 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ के 8वें और आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचेव के साथ ऐतिहासिक INF न्यूक्लियर संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कहे थे। उनकी ये पंक्तियां वाकई ऐतिहासिक थीं, क्योंकि इस संधि ने शीत युद्ध में उलझी दो महाशक्तियों के बीच न सिर्फ तनाव खत्म किया बल्कि भरोसा भी कायम किया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह बताते हैं कि INF संधि के बाद दोनों देशों ने बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइलों को नष्ट कर दिया था।
INF न्यूक्लियर ट्रीटी जो है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस का पूरा नाम है, जो 1987 में रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच शीत युद्ध उपरांत, मान लीजिए क्योंकि खत्म ही होने वाला था शीत युद्ध को, और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था अमेरिका और सोवियत संघ में कि गतिरोध को खत्म किया जाए ताकि जो आने वाला टेंशन है यूरोप में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वो खत्म किया जा सके। इसके तहत ये माना गया था कि 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले जितने भी मिसाइलें हैं उनको खत्म किया जाएगा। सोवियत संघ ने करीब 2000 मिसाइलों को नष्ट किया था और अमेरिका के पास लगभग 600 मिसाइल थे जो जिनकी मारक क्षमता 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की, तो उसको खत्म किया गया था।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच छिड़ा राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 70 के दशक के मध्य में रूस ने अपने यूरोपीय हिस्से में ऐसी मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जहां से पश्चिमी यूरोप को निशाना बनाया जा सकता था। इससे अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी चिंतित हो उठे थे। 1980 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1985 में रूस में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए। ये वो दौर था जब मंद होती अर्थव्यवस्था के कारण सोवियत संघ की ताकत कम हो रही थी। 80 के दशक के बीच इन दोनों नेताओं ने बातचीत शुरू की और फिर 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पर दस्तखत हुए। ये पहला मौका था जब दुनिया को यकीन हुआ कि शीत युद्ध भी खत्म हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकी स्टडीज के प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा बताते हैं,
INF ट्रीटी एक सिंबॉलिक तौर से आर्म्स कंट्रोल, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को एक सिंबॉलिक तौर पे एक अचीवमेंट माना जाता है, जिसको लेके अमेरिका, सोवियत यूनियन, बाद में रशिया और यूरोपियन कंट्री सब खुश थे। और 1987 में जब ये साइन हुआ, भारत का प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी उसको काफी प्रशंसा की थी।
जो हथियार कुछ मिनटों में तबाही मचा सकते थे, इस संधि ने उन्हें म्यूजियमों में पहुंचा दिया। सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन अमेरिका और रूस इस समझौते का सम्मान करते रहे। लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों में विश्वास कम होता गया। 2002 में अमेरिका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से पीछे हट गया, जिस पर 1972 में दस्तखत हुए थे। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा बताते हैं कि जब भी अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति बनते हैं, उनका रवैया हथियारों को लेकर अलग रहता है।
जब जब रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका आर्म्स कंट्रोल के ऊपर जो अप्रोच है बिल्कुल अलग सा है। वो ये चाहते हैं कि जितने भी नए नए किस्म का वेपन्स अमेरिका बना सकता है वो बनाना चाहिए, और सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन करके अमेरिका अपना देश को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अभी नए नए किस्म का जो वेपन्स बनाने जा रहा है या उसको अभी डिप्लॉय करेंगे, और INF ट्रीटी एक बाधा, एक ऑब्स्टिकल था, उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले क्या था, जॉर्ज बुश ने ABM ट्रीटी जो 1972 में साइन हुआ था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, वही फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ, और उससे वो हट गए। तो जो मिसाइल रेस को रोकने के लिए जो पहला जो रुकावट ABM ट्रीटी, वो अभी ऑपरेशन में नहीं है। अभी INF ट्रीटी जो कि आर्म्स कंट्रोल का सबसे बढ़िया नमूना था, वो भी अभी हट गया है।
2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि INF संधि उनके देश के हितों के लिए ठीक नहीं है, मगर अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने 9M729 मिसाइल तैनात किए हैं, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से अधिक है, और ये संधि का खुला उल्लंघन है। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं,
अमेरिका ने रशिया के खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा है कि रशिया INF ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, और रशिया का ये कहना है कि ये INF ट्रीटी के अंतर्गत आता है, इसके खिलाफ नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब साफ साफ ये कह दिया कि हम आपको 60 दिन का समय देते हैं, अगर आप इसको नहीं हटाएंगे ये मिसाइल को, तो फिर हम INF ट्रीटी के सस्पेंड करके निकल जाएंगे। जब अमेरिका ने इन INF ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तुरंत रशिया ने उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया।
रूस और अमेरिका में भले ही आरोपों का दौर चल रहा है, लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिका के इस कदम का असल मकसद चीन पर लगाम कसना भी हो सकता है। डॉक्टर अमिताभ सिंह बताते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच का ये समझौता जिस रेंज के हथियारों को प्रतिबंधित करता है, उस रेंज के हथियार अन्य देश भी बना रहे हैं।
ये सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ और बाद में अमेरिका और रूस के लिए ही लागू होता था, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया इससे बाहर थे। तो अब माना यह भी जा रहा है कि सोवियत संघ के जमाने में और उस समय ये काफी इफेक्टिव था, आज के दौर में इसका स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है। ये माना जाता है कि चीन और शायद ईरान भी 500 किलोमीटर से अधिक रेंज के इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बना रहे हैं।
प्रोफेसर महापात्रा का भी मानना है कि इस संधि के टूटने के बाद हथियारों की होड़ शुरू होगी, जिसके बाद अमेरिका एक नया वैश्विक समझौता चाह सकता है, जिसमें रूस के अलावा चीन भी हो, भारत भी और अन्य देश भी।
नया किस्म का आर्म्स रेस शुरू होने वाला है। अमेरिका अपना नए नए वेपन्स बना रहा है डिप्लॉय करने के लिए, रशिया भी वही कर रहा है, और इसका जो प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर भी आएगा। मुझे लगता है अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो नए किस्म का अगर एक समझौता हो और एक ट्रीटी बने, उसमें चाइना का जो कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी, वो भी शामिल हो।
JNU के डॉक्टर अमिताभ सिंह बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका का प्रभुत्व बनाए रखने और अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं ताकि दूसरों पर अपनी शर्तों पर समझौते के लिए दबाव बना सकें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस संधि के हटने से रूस, चीन या अन्य देश किसी ऐसे समझौते के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे जैसा अमरीका चाहता है। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं,
अमेरिका का अभी जो आर्थिक स्थिति काफी अच्छा है और चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है और रशियन इकोनॉमी भी इतना अच्छा नहीं है। अमेरिका के पास इतना पैसा है कि उनका एक स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है कि कंपटीटर हैं, राइवल हैं, उनको आर्म्स रेस में ऐसे उलझाया जाए कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और घट जाएगा। तो अमेरिका अगर अपना नए नए किस्म का हथियार बनाएगा और रशिया भी वही करेगा, चाइना उसको भी अपना अपना हथियार बनाना पड़ेगा। तो जब आर्म्स रेस हो जाएगा, एक अलग किस्म का दबाव तो देश के अंदर से ही निकलेगा कि इतना पैसा आप खर्चा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद एक ऐसा एक स्थिति बनेगा जिसमें मेजर पावर सब बैठ के एक आर्म्स कंट्रोल के लिए अलग सा ट्रीटी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एक हिंट भी दे चुके हैं कि ऐसा एक नया किस्म का ट्रीटी बनाए जिसमें पूरे विश्व का फायदा हो।
INF न्यूक्लियर संधि अभी स्थगित है, पूरी तरह टूटी नहीं है, लेकिन हथियारों की होड़ शुरू होने के संकेत दिखने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो नए हथियार बनाना शुरू करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि वो किसी होड़ में शामिल नहीं होंगे और जब तक अमरीका छोटी और मध्यम दूरी के हथियार तैनात नहीं करता, वो भी इस तरह के हथियार तैनात नहीं करेंगे। लेकिन 31 साल पहले पूरी दुनिया के दिल से विश्व युद्ध के डर को दूर करने वाली INF संधि के टूटने की आशंका ने एक बार फिर यूरोपीय देशों और बाकी दुनिया के लिए चिंता तो पैदा कर ही दी है।
दुनिया जहान की ये कड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब चलते चलते सुनते हैं खेल की दुनिया की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह और आज बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को आज 80 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वेस्ट पैक स्टेडियम में 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19 ओवर होने तक 139 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 39 रन बनाए जो सबसे ज्यादा रन थे। उन्होंने 31 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत ने बेहद खराब शुरुआत की और उसने पहला विकेट 18 के कुल स्कोर पर गंवा दिया। सलामी बल्लेबाज रोहित टिक्कर बल्लेबाजी नहीं कर सके और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। T20 मैचेस के बारे में क्या कहना है क्रिकेट एक्सपर्ट आयाज मेमन का, सुनिए।
वैसे भी T20 जो है एक तरह का लॉटरी होता है क्योंकि जितने ओवर्स कम होते जाते हैं उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। जैसे अफगानिस्तान और आयरलैंड को भी अगर आप देख लें तो बड़ी बड़ी टीम्स को T20 में हरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ओवर्स बढ़ते हैं, 50 ओवर की मैच हो या फिर टेस्ट मैच हो, तो उनका जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ टेक्निक है, वो सामने जाहिर हो जाता है।
ये थे क्रिकेट एक्सपर्ट आयाज मेमन। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि भारत की 4 सबसे बड़ी T20 हार में से 3 बार न्यूजीलैंड की टीम ने ही भारत को शिकस्त दी है। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली इन 3 हारों में से 2 मुकाबले भारतीय जमीन पर ही हुए हैं। आज खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बना डाले। न्यूजीलैंड की तरफ से 84 रनों की पारी उनके ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ट ने बनाए। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में अवैध प्रवासन रोकने और सीमा पर दीवार बनाने की अपनी योजना पर समझौते की अपील की है। नेटो के सदस्य देशों ने ब्रसल्स में हाल ही में नाम बदलने वाले रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया को नेटो के 13वें सदस्य के रूप में शामिल करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। पोप फ्रांसिस ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च में बिशपों और पादरियों द्वारा नुनों के शोषण की समस्या रही है। स्पेन में विपक्ष के नेता पाब्लो कसाडो ने प्रधानमंत्री पेद्रो सैंचेज पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। कैटलोनिया के अलगाववादी प्रशासन के साथ बातचीत के लिए पर्यवेक्षक की इजाजत देने के विरोध में उन्होंने ये आरोप लगाया। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रवि कुमार ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे, तब तक बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दाज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।